ओम शांति, ओम शांति। जरा जोर से एक बार ओम शांति। आज के इस सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज यहाँ पर जो एक नाटक आप देखने वाले हैं विशेष, वो सभी को लेकर बनाया गया ऐसा नाटक है जिसमें साइंस और आध्यात्मिकता कैसे एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं, इसी को लेकर एक सुंदर नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, अंधेरा धरा से दूर भगाएं, रह ना जाए अंधेरा कहीं, सदा आत्मदीप जलाते जाएं। आत्मा की ये दीप सदा जगती रहे, इसी आशा के साथ अगली प्रस्तुति हम जो लेकर आ रहे हैं खास, डिवाइन कल्चर एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप, जिसमें युग्रतन भाई विशेष हैं, वो देश विदेश में जाकर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं, उनके साथ दामिनी बहन हैं, दोनों मिलकर एक विशेष प्रस्तुति आपके समक्ष पेश करने वाले हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी युग्रतन भाई को।
ओम शांति। आज की ये सुहानी शाम उन महान आत्माओं के नाम है जिन महान आत्माओं ने इस दुनिया में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और पापाचार से बिगड़ते हुए इस दुनिया को एक स्वर्णिम दुनिया के रूप में खड़ा करने का, उसका कंस्ट्रक्शन करने का जिम्मेदारी लिया हुआ है। और उन आत्माओं ने इस दुनिया में एक क्रांति फैलाने की, एक आंदोलन सी शुरुआत की है, और उसी शुरुआत को आज एक नया रूप दे रहे हैं हम आपके बीच, एक बहुत सुंदर सा आपके बीच नृत्य नाटिका होगी जो आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देगी कि इस स्वर्णिम दुनिया जो कि बहुत निकट भविष्य में आने वाली है, उस स्वर्णिम दुनिया का आपके बीच एक झांकी, वो झांकी जो एक नई इंजीनियरिंग और साइंस के साथ में होगी, उसको प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए, वो साइंस जो आज एक विनाशकारी रूप में प्रतीत होती है, प्रकृति के लिए शत्रु के रूप में प्रतीत होती है, वो कैसे इस दुनिया के लिए कल्याणकारी बनेगी, आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत सुंदर नगमे के साथ। हो 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 आ
भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार।
अब ना छेड़ो, बहुत हो गया, जल रहा है ये संसार।
मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुन प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुन प्रकृति की पुकार।
उस प्रकृति की ये पुकार कि इस दुनिया में जो नई दुनिया लानी है तो हमें क्या करना है,
let's धरती माँ की गोद में पलने वाले इंसान, ममता का जो सुख पाया भूले क्यों एहसान। जंगल काटे जलना बरसे, जंगल काटे जलना बरसे, हो गया जग वीरान। इन्हें बचा कर आओ करें इन पर ये एहसान। मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार।
प्रकृति के लिए परमात्मा की एक दुआ है।
जीना मुश्किल दम ना घुट जाए कहीं, हवाएं मैली मत करो दिशा दिशा ये कह रही।
हो जाए जीना मुश्किल दम ना घुट जाए कहीं, हवाएं मैली मत करो दिशा दिशा ये कह रही।
हर एक प्राणी जीते इन्हीं से, हर एक प्राणी जीते इन्हीं से, सबका ये आधार। इन्हें बचा कर आओ करें सब पर ये उपकार।
प्यारे प्रभु का सपना यही है, स्वर्गित हरियाली करे साकार।
मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार। मेरे भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति की पुकार। भारतवासी जाग उठो, अब सुनो प्रकृति के पुकार, सुनो प्रकृति के पुकार, सुनो प्रकृति के पुकार, सुनो प्रकृति के पुकार।
तो सुनिए उस प्रकृति की पुकार को, क्या कहती है वो प्रकृति।
विज्ञान ने नित नई खोज कर मानव को चकित कर दिया है। सुख सुविधाओं के सारे साधन उपलब्ध हैं। विश्व सिमट कर एक ग्लोबल विलेज बन गया है। वहीं दूसरी ओर विज्ञान के साधनों के दुरुपयोग ने सारे संसार में भयंकर समस्याओं को जन्म दे दिया है। प्रकृति के पांच ही तत्व प्रदूषित हो गए हैं। लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाकर वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को जन्म दे रही है। वहीं मानव मन का प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। मानव मन की नकारात्मक वृत्तियां, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, क्रोध, वासना आदि अति में जा रही है। प्रकृति आक्रोशित है, वह भी इतने अधिक दुर्व्यवहार को सह नहीं सकती। प्रकृति एक संपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है। हम समय के इस दौर से गुजर रहे हैं जो मानवता के लिए कठिनतम है। स्नेह, सत्यता, शांति, मधुरता, सहयोग, सामंजस्य आदि मूल्यों की बढ़ती गरीबी इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। हर मानव आज असुरक्षित है, एकाकी है, आशंकित है। विनाश के बादल सारे विश्व पर मंडरा रहे हैं। हम विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सर जेम्स चिंग कहते हैं, विश्व एक ऐसी घड़ी की तरह है जो कि बंद पड़ी रही है, जिसमें जहां तक विज्ञान जानता है कि कोई भी कभी भी चाबी नहीं भरता। वह फिलहाल अंशतः चाबी भरी हुई घड़ी है, जिसमें अतीत में किसी तरीके से, जो कि हमें ज्ञात नहीं है, चाबी भरी हुई होगी। क्या इस ज्वलंत प्रश्न का मानवता के पास कोई जवाब है? समय के गर्भ में हर समस्या का समाधान होता है, पर कैसे? आइए आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के सुंदर जंगलों में, जहां बहुत सुंदर नैसर्गिक दृश्य है। आदिवासी लोग इस शोभनीय प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। प्रकृति सदा ही लोगों को आनंदित करती रही है, पर इस प्राकृतिक सौंदर्य के दोहन की जोर शोर से तैयारियां चल रही है।
चुप, एकदम चुप। आज के ये प्रगतिशील दौर में ग्लोबलाइजेशन के कारण ये जरूरी हो गया है कि मेट्रो सिटीज के तर्ज पर बड़े बड़े मॉल्स बनाए जाए। इसके लिए ये हरे भरे जंगलों को काटना भी पड़े तो काटो यार। ए, उखाड़ फेंको इस वृक्ष को, जल्दी करो, जल्दी करो।
इन पेड़ों को मत काटो साहब, ये हमें अन्न जल प्रदान करने वाले जीवन दाता कुल देवता हैं। हम बेसहारा हो जाएंगे साहब, इन्हें मत काटो।
इधर आ, इधर आ। अरे तुम जंगली लोग क्या जानो सिटी की शानो शौकत क्या होती है। यहाँ बनने वाले मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में बड़े बड़े लोग रहेंगे और तुम गवारों का जीवन भी सुधर जाएगा। चल उखाड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो।
ऐसा गजब मत करो साहब, प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ठीक नहीं। आपके इस कृत्य से हमारी जनजाति तो खतरे में पड़ ही जाएगी, पर आप शहरी लोग भी प्रकृति के प्रकोप से बच नहीं सकेंगे।
अरे यार, ये जंगली लोग तो सुधरना ही नहीं चाहते। तुम छोड़ो। ए, चलो चलो, तुम अपना काम करो।
हेलो, आप मिस्टर दर्शन बोल रहे हैं?
या दर्शन स्पीकिंग।
दर्शन साहब, आपके बंगले में भीषण आग लगी थी। आग इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि फायर ब्रिगेड वाले भी कुछ न कर सके। आपका घर जलकर खाक हो चुका है।
क्या, मेरा घर? वेट 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 अ मिनट, मेरा घर जलकर खाक हो गया? ए, मेरे मम डैड कहाँ है, वो कैसे?
सॉरी सर, हम उनको भी नहीं बचा सकते।
ऐसा गजब मत करो साहब, प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ठीक नहीं। आपके इस कृत्य से हमारी जनजाति तो खतरे में पड़ ही जाएगी, पर आप शहरी लोग भी प्रकृति के प्रकोप से बच नहीं सकेंगे।
ये क्या अनर्थ हो गया। लगता है कि मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे परिवार को मिली। मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। मैंने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया, बहुतों की बददुआएं ली, पर इसका सुधार कैसे करूं। भगवान मदद करो। गॉड हेल्प मी।
शंकुट का साक्षात मूर्ति, शंकुटा मूर्ति, क्या कर रहा है दोस्त? हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट कहाँ तक सफल हुआ? जंगला वायरस रेडी हुआ कि नहीं?
अयो दादा, वेलकम माय फ्रेंड। हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट 90% सक्सेसफुल। हमें चिंपांजियों को कई राउंड टेस्ट किया, मालूम जंबोला वायरस का लास्ट DNA टेस्ट का फाइनल रिपोर्ट आना बाकी जी। फिर हमारा जंबोला वायरस एकदम रेडी, और उसको किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचकर हम दोनों माला माल जी।
वेरी गुड अन्ना, लेकिन हमारा बॉस है ना, उसको ये बात पता नहीं चलना चाहिए। हमारा बॉस बहुत खड़ूस है, हमारा भूता बना देगा। एकदम सच्चा देशभक्त है।
तुम एकदम ठीक बोला जी, बी केयरफुल।
अरे अन्ना, ये क्या कर दिया? को, मैं अभी एंटीडोज पे करता हूँ।
थैंक यू जी, आज तुम टाइम पर एंटीडोज स्प्रे करके हम सबका जिंदगी बचा लिया, नहीं तो नेक्स्ट 20 मिनट में हम भगवान को प्यारा हो जाता और हम कुआरा नहीं मरना चाहता जी।
सोके हो ना, चलो अच्छा बात है, बॉस को पता नहीं चला। थैंक गॉड।
डॉक्टर संकटामूर्ति, डॉक्टर समाधान, हमारे बायोलॉजिकल वेपन्स का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है, क्या रिजल्ट आया?
अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी जी।
कर लेगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा।
तुम दोनों को अंदाजा भी है कि ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, हमको मिली हुई मियाद खत्म होने को आ रही। मैं डिफेंस मिनिस्टर को क्या जवाब दूं? मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, यदि प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ तो रोड पर चने बेचने के काबिल भी नहीं रहोगे, याद रखना।
सर जी, सॉरी सर। आइयो, चना, हम चना क्यों बेचेगा जी? चना तो वो देश बेचेगा जहां हम जंबोला वायरस फैलाएगा ना जी। हम तो बेचेगा जंबोला वायरस का एंटीडोज जी।
सही बोलता है दादा, जब उस देश में संकट पड़ेगा ना तो ये समाधान चटर्जी समाधान प्रस्तुत करेगा, जंबोला वायरस का एंटीडोज बनाएगा और बेचेगा, फिर माला माल।
वेरी गुड जी, पर ये राज ही रहे, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए जी।
अरे डोंट वरी अन्ना, आओ ना, इसी खुशी में डांस करेगा।
ओम जय जगदीश।
अरे मैंने तुमसे ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा था, अभी तक तैयार क्यों नहीं है? व्हाट टाइम? और कितना चाहिए?
हनी, डिनर तो कर लीजिए।
अभी टाइम नहीं है, तुम खाकर सो जाओ, मैं बाद में कर लूंगा। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट की टेंशन में तो रातों की नींद भी उड़ गई। लगता है नींद की गोलियां खाए बगैर नींद नहीं आने वाली। ओह माय गॉड, 7 बज गए, इतना लेट। स्नेहा, स्नेहा।
हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ जी?
तुमको बोला था कि मुझे सुबह 5 बजे जगा देना, फिर जगाया क्यों नहीं?
जगाया तो था।
सरासर झूठ, कब जगाया था?
अरे जैसे ही तुम्हारा रात को SMS रिक्वेस्ट आया था, वैसे ही मैंने तुम्हें सुबह SMS रिप्लाई भेज दिया था। यकीन नहीं होता तो अपना फोन चेक कर लो।
देखो तुम।
एक मिनट विजय, हम इंसान हैं या मशीन? क्या ह्यूमन इमोशंस का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है?
इमोशंस, ओ माय गॉड, डोंट बी सेंटी। देखो स्नेहा, तुम अगर साइंस पर उंगली उठा रही तो ये भी समझ लो कि विज्ञान ने हमें आज क्या नहीं दिया। हम ब्रेकफास्ट दिल्ली में करते हैं और लंच लंदन में। ऐश आराम के सारे साधन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, माइक्रोवेव सिस्टम, 7-star होटल्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, ये सब किसने दिए? साइंस ने। कम्युनिकेशन फील्ड में सेल फोन, सैटेलाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी चमत्कारिक चीजें किसने दी? साइंस ने। अरे हमने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है।
दुनिया में जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था तब क्या लोग जिंदगी नहीं जिया करते थे? आपने दुनिया की दूरियां तो मिटा दी, पर दिलों की दूरियां कितनी बढ़ा दी है, इसका आपको कोई अंदाजा भी है? समाज में अश्लीलता, हिंसा, दुख, तनाव, निराशा, भय, चिंता कितनी बढ़ा दी है। परिवार टूटकर बिखर रहे हैं, समाज में अनैतिकता फैल रही है। मानव अब मानव न रहकर एक मशीनी दानव बनकर रह गया है जो भावना शून्य है।
तुम किस जमाने में जी रही हो मैडम? अरे हम चांद पर कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, मंगल पर जीवन की खोज जारी है।
मंगल पर जीवन की खोज बहुत हो चुकी मिस्टर साइंटिस्ट, अब इसकी खोज करें कि आपके जीवन में मंगल कहाँ है। आपके साइंस ने लोगों का जीवन कितना मंगलमय बनाया, मन की शांति कितनी दी, अब जरा इसकी खोज करें तो कुछ बात बने।
पापा, आज हमारी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और आपको मेरे साथ चलना है।
सॉरी बेटा, आज मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है डिफेंस सेक्रेटरी के साथ, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम मम्मी को अपने साथ ले जाओ।
बेटा, आज कॉलेज में नेशनल सेमिनार है जिसमें मम्मा कोऑर्डिनेटर है। आज नहीं गई तो प्रोग्राम कौन कंडक्ट कराएगा? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे प्रोग्राम में आऊँ। ठीक है, कैसे भी करके 10 मिनट के लिए तुम्हारा फंक्शन जरूर अटेंड करूंगी। ठीक है बेटा।
आओ ना, हम तुमको अपना बनाया हुआ हाइब्रिड नस्लों का झोलकी दिखाता हूँ। देखो ना, ये जानवर मुर्गा और गेंडे का हाइब्रिड करके हमने बनाया। इसका नाम तुम्हारे सम्मान में साउथ इंडियन रखा है, मुर्गेंडा।
दादा, तुम हमारा मजाक उड़ाता,
पर ये तुम्हारे मुर्गेंडा का यूज क्या होता जी?
देखो ना, हम ये छोटा छोटा मुर्गी खा के थक गया। हमको छोटा मुर्गी खाना पसंद नहीं है। हम इतना बड़ा मुर्गी नहीं बना सकता ना, इसलिए गेंडा के साथ क्लोनिंग करके इतना बड़ा जानवर मुर्गेंडा बनाया।
अयो दादा, दुनिया में तुम ही अकेला इडियट नहीं है, समझा जे?
क्या मतलब?
अयो दादा, हम भी ऐसा कुछ बनाया मालूम, हमने घोड़ा और शुतुरमुर्ग को जोड़ा और बन गया शुतुर घोड़ा, मतलब कैमल बर्ड से हॉर्स बर्ड, और जे आर्मी ने इसको ट्रायल भी किया, ये देखो।
अरे दादा, यू आर ग्रेट।
ना जे, वी बोथ आर ग्रेट जी।
गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग भाभी, गुड मॉर्निंग अदिति बेटा।
गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग बुई।
भाभी, मेरा नाश्ता रेडी हो गया क्या?
यस माय डियर, ला रही हूँ, बैठो।
तो उठ गई हमारी इंजीनियर साहिबा। वैसे मंगलयान के सफल प्रक्षेपण पर बधाई हो। सुना है यान के क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने में तुम्हारा इम्पोर्टेंट रोल रहा।
हाँ भैया, थैंक यू फॉर आस्किंग। और आपका वो डिफेंस वाला टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है?
गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेवारी वाला प्रोजेक्ट इन कंधों के भरोसे है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि बस कुछ ऐसा काम कर दिखाऊं जो हमारे देश का लोहा सारी दुनिया मान जाए।
हाँ भैया, हम सभी अपने देश को कामयाबी की बुलंदियों को छूते देखना चाहते हैं। ईश्वर करे कि हमारे सपने जल्द ही साकार हों।
होगा होगा, जरूर होगा। अगर आप दोनों ग्रेट लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो ये बच्चे भी अपना कुछ एंटरटेनमेंट कर ले। देखो पापा, आपका साइंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, आपकी इंजीनियरिंग भी फेल हो गई बुई। अब क्या बोलते हो आप लोग, कुछ कर सकते हो?
एक बात बोलो डॉक्टर साहब।
बोलो।
आप देशभक्त साइंटिस्ट भले हो, पर लगता है आप अपनी देशभक्ति का फर्ज निभाते निभाते भाई होने का फर्ज भूल गए हैं।
क्यों, क्या हुआ?
सच कह रही हूँ, अगर भाई का फर्ज याद होता तो अपनी प्यारी सी बहन का घर बसाने के बारे में जरा सोच लेते, जो अब इतनी बड़ी हो चुकी है।
अरे हाँ डियर, सही कह रही हो तुम, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? शादी तो हो ही जाएगी।
बट डियर, शादी के लिए एक सुंदर, सुशील और अच्छे लड़के की जरूरत होती है, और लड़का कोई घर बैठे नहीं मिलने वाला। आपने देखा है कोई लड़का?
अरे मेरे पास इतना टाइम कहाँ है डियर, तुम देखो ना कोई लड़का।
मुझे पता था डॉक्टर साहब आप ऐसे ही कहेंगे। एक लड़का है, आप भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं।
तुम किसकी बात कर रही हो?
अरे आपके दोस्त का छोटा भाई दर्शन, विशाखा का क्लासमेट भी तो था, इसलिए वे एक दूसरे को जानते भी हैं। सुना है गवर्नमेंट में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंजीनियर है, मुझे लगता है वो हमारी विशाखा के लिए परफेक्ट होगा।
अरे हाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, मेरे ध्यान में ही नहीं आया, तो देर किस बात की, लगाओ फोन।
हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप?
अरे दर्शन, बड़ी लंबी उम्र है भाई तुम्हारी, कहाँ हो आजकल, मुंबई कब आ रहे हो?
भाई साहब मैं एक एनजीओ के काम से मुंबई आया हुआ हूँ, सोचा आप सबसे मिलूं।
वेरी गुड, अभी सोचना क्या, बस तय हो गया, आज शाम घर में एक छोटी सी पूजा है, वो भी अटेंड कर लेना और सबसे मिल भी लेना।
ओके भाई साहब।
स्नेहा तुम्हारी जबान की दाद देनी पड़ेगी, लड़का तो घर बैठे ही मिल गया।
आप भी ना।
आज समाज में, देश में खुशहाली है, लोगों का जीवन बेहतर बना है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान धर्म का है। धर्म ही शक्ति है, तभी तो कहा जाता है रिलीजन इज माइट। आज लोगों की सबसे बड़ी ताकत धर्म है। हमारा धर्म प्राचीन और सनातन है, इसलिए अन्य सभी धर्मों को हमारे धर्म की शिक्षाएं ही अपनानी चाहिए। एक धर्म नेता ही समाज का कल्याण कर समाज की नई दिशा निर्धारित करता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि धर्म रक्षा के लिए यदि शस्त्र भी उठाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। यही तो भगवान कृष्ण और परशुराम ने भी किया।
प्रणाम महाराज।
आयुष्मान भव, तुम्हारी जीवन यात्रा कैसी चल रही है पुत्री?
आपका आशीर्वाद है महाराज, सब कुशल हूँ। आपको निमंत्रण देना था, घर पर कुल देवता की पूजा है, आप पधारेंगे तो बड़ी खुशी होगी।
वैसे तो हम किसी के घर नहीं जाते, पर चूंकि तुम हमारे अति स्नेही हो, इसलिए हमारे प्रति तुम्हारी आस्था और श्रद्धा को देखते हुए हम तुम्हारा यह निमंत्रण स्वीकार करते हैं, हम अवश्य आएंगे।
धन्यवाद महाराज। माफ कीजिए महाराज, अरे बाबा मैं आ तो रही हूँ, मैं महाराज जी के आश्रम में हूँ।
गुरु जी आज हम जहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए गए थे ना, वहाँ अचानक दंगे भड़क गए। इसके पहले कि हम समझ पाते, आपके पुत्र के सिर पर प्राणघातक चोट लगी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। गुरु जी,
आज मैं धर्माचार्य दक्ष लोगों को धर्म के बड़े बड़े उपदेश देता हूँ, उन्हें समझाता हूँ कि धर्म में ही शक्ति है, धर्म में ही शांति है। लेकिन क्या यही वास्तविकता है? अगर धर्म से शांति मिलती तो मैं भी शांति और आनंद की अनुभूति कर पाता, धर्म के नाम पर यूं दंगे ना होते। क्या वाकई धर्म इस विश्व को सुख शांति दे पाया? इस प्रश्न का जवाब तो शायद स्वयं धर्म के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है।
प्रणाम महाराज, आइए आइए, ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे।
कल्याण हो पुत्री, तुम्हारा निमंत्रण तो हमें स्वीकार करना ही था।
धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। आइए आपको परिवार के बाकी सदस्यों से परिचय करवाती हूँ। भैया भाभी, ये देखिए हमारे घर कौन पधारे हैं।
आइए महाराज, आपको कौन नहीं जानता। अरे मंत्री हो या प्रशासनिक अफसर, चाहे बिजनेसमैन, आपके दरबार में तो सभी माथा टेकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं जो आप हमारे घर पधारे। आइए।
अरे स्नेहा, महाराज जी के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो।
हाँ जी, अभी लाती हूँ।
नमस्ते भाभी जी, सॉरी थोड़ी देर हो गई।
अरे दर्शन, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ अंदर आओ, देखिए तो दर्शन आए हैं।
अरे आओ दर्शन, बहुत देर कर दी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
कैसे हो दर्शन?
आई एम ओके, और तुम?
आई एम फाइन। आइए बैठिए ना।
दर्शन चाचू, कितने दिनों बाद आए।
सच में दर्शन, तुम जब भी घर आते हो ना, घर का माहौल ही बदल जाता है, सभी खुशी महसूस करते हैं। तुम में कुछ तो बात है भाई।
बिल्कुल सही कह रही हो स्नेहा। अच्छा भाई दर्शन, तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तो तुम गायब ही हो गए।
हाँ डॉक्टर साहब, उस हादसे में माँ बाबूजी को खो देने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था। बहुत निराश होकर काम में मन लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए निमंत्रण मिला। फिर मेरा माउंट आबू जाना हुआ और वही से मेरा जीवन के प्रति नजरिया बदल गया। मैंने वहाँ अद्भुत जीवन शैली देखी, वहाँ के लोगों में उत्कृष्ट सेवा भाव, समर्पणता, उनके चेहरे की दिव्यता, उनका प्रेम पूर्ण व्यवहार और नैतिक मूल्य संपन्न जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा और प्रभावित होकर उस पर डीप स्टडी और शोध किया, जिससे मुझे आश्चर्यजनक और चमत्कारिक परिणाम मिले। मैंने अपना काफी समय इसी गुप्त खोज व साधना में लगाया।
जहाँ चारों ओर भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनैतिकता और स्वार्थ व्याप्त है, ऐसी दुनिया में भी ऐसे लोग रहते हैं, ताज्जुब है।
हाँ भाभी, यह संभव है। पहले मैं भी ऐसी जीवन शैली की कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैंने खुद देखा तब यकीन हुआ कि हम सबकी मूल्य आधारित समाज की जो संकल्पना है वह यही से साकार हो सकती है।
तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि धर्म से हटकर भी कोई चीज है जो लोगों के जीवन में सुख शांति ला सकती है और सभी को नई दिशा दे सकती है?
महाराज, आज आप धर्म की हालत तो देख ही रहे हैं। धर्म के नाम पर जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। कुछ लोग अंधविश्वास और कर्म कांड को ही अपना धर्म मान बैठे हैं, जबकि आज सभी धर्म मूल तत्व शांति, दया, प्रेम, करुणा, परोपकार आदि सब तो प्राय लुप्त हो चुके हैं। आज आध्यात्मिकता को अपना कर ही हम इन गुणों को व शक्तियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिकता ही संसार की सारी समस्याओं का निदान है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति धार्मिक है वो आध्यात्मिक भी हो, क्योंकि अध्यात्म कोई धर्म नहीं है, लेकिन सर्व धर्मों का मूल है, सार है, आधार है। अब मैं लोगों के सामने उस महान रहस्य को रखना चाहता हूँ जो मैंने माउंट आबू में अनुभव किया।
दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को आध्यात्मिकता कम कर सकता है क्या जी?
डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही है, थर्मोडायनामिक्स के द्वितीय नियमानुसार जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है तब ऊर्जा के उस रूप की हानि होती है जो कि किसी प्रकार का कार्य करने के लिए उपलब्ध होती है। उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में होने वाली हानि एंट्रोपी कहलाती है। यह एंट्रोपी बढ़ने का कारण आज हम ऊर्जा के सबसे निम्न स्तर पर जी रहे हैं। ऐसी एंट्रोपी बढ़ने का सीधा कारण प्रदूषण है और प्रदूषण का कारण मनुष्य की लोभ वृत्ति है। कहते हैं धरती माता मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है लेकिन मनुष्य की लोभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। लोभ के कारण मानव पैसे कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। यही ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण है।
लेकिन दर्शन, इसी थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम कहता है कि यह दुनिया एक क्लोज सिस्टम है जहाँ एनर्जी ना तो अंदर से बाहर जा सकती है और ना बाहर से अंदर आ सकती है। तो फिर इस सिस्टम को वापस पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है?
एक महान रहस्य मुझे माउंट आबू में जानने को मिला कि परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कलयुग के अंत में इस क्लोज सिस्टम के अंदर आते हैं एवं मनुष्य आत्माओं एवं प्रकृति दोनों को चार्ज करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। इस विधि को ही राजयोग कहते हैं। वहाँ राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। इससे हमारा मन बहुत शक्तिशाली और पॉजिटिव हो जाता है। हमारे विचारों का प्रकृति के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, भले ही वो विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक। इसी टॉपिक पर रिसर्च करने जापान से डॉक्टर मसारू इमोटो भी माउंट आबू आए हुए थे, जिन्होंने मानव मन में उत्पन्न होने वाले विचारों एवं भावनाओं के पानी पर प्रभाव का गहरा शोध किया है। ये एक एक्सपेरिमेंट था, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन थॉट्स ऑन वाटर, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में 10 अक्टूबर 2009 को प्रातःकालीन योग सत्र के दौरान मुझे देखने को मिला। डॉक्टर इमोटो ने दादी जानकी के सामने पानी से भरा ग्लास रखा और दादी ने मेडिटेशन द्वारा एनर्जी व शुभ संकल्पों का वाइब्रेशन उस पानी को दिया, जिससे पानी की संरचना में अद्भुत एवं पॉजिटिव चेंज पाया गया। इसी प्रकार राजयोग का प्रभाव प्रकृति के सभी तत्वों पर पड़ता है।
तो क्या राजयोग द्वारा परमात्मा से एनर्जी रिसीव कर सकते हैं?
जी हाँ, मैं वहाँ के महान राजयोगियों से मिला, जैसे दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मोहिनी जी, भ्राता निर्वेर जी, भ्राता मोहन सिंघल जी। ऐसे कई महान आत्माएं जो राजयोग के द्वारा सुप्रीम पावर से एनर्जी लेकर प्रकृति को प्योर वाइब्रेशन देते हैं, जो प्रकृति भी हमारी मददगार बन जाती है और हम प्राकृतिक आपदाओं में भी सेफ रहते हैं। जैसे सन 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में आए भूकंप की तीव्रता 6.3 थी और सन 2001 में गुजरात के भुज क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता 7.9 थी। लेकिन इन भीषण हादसों में भी यहाँ के राजयोग शिक्षा केंद्र सुरक्षित रहे। ये पवित्र योग युक्त प्रकंपनों के आगे प्रकृति भी नतमस्तक होने का एक बड़ा उदाहरण है। इसी तरह की एक घटना अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है, जहां इतने बड़े हादसे में राजयोगी ब्रह्मा कुमार राम प्रकाश न केवल स्वयं सुरक्षित निकल आए बल्कि अनेकों को सुरक्षित निकालने में भी सफल रहे। और ठकराल साहब, ये सारी न्यूक्लियर वेपन्स जो विभिन्न देशों ने बनाए है, उन्हें शोकेस में सजा कर रखने के लिए तो नहीं बना गया है? निश्चित रूप से भविष्य में न्यूक्लियर युद्ध होगा ही और सारे संसार में एक महान परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ये अनगिनत न्यूक्लियर विस्फोट वातावरण में अनंत एनर्जी भर देंगे और भयानक नेचुरल कैलिमिटीज भी तो आएगी जो पूरी कायनात में महापरिवर्तन लाएगी। इसमें भी तो एनर्जी का उत्सर्जन होगा और ये सभी मिलकर सारे क्लोज सिस्टम को चार्ज कर देंगे।
अरे दर्शन, ये तो टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिस पर हमारी गवर्नमेंट खुद डिफेंस लेवल पर रिसर्च कर रही है। एक इंजीनियर होते हुए भी इतनी टॉप की साइंटिफिक रिसर्च की बात तुम कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो? मेरी तो समझ के बाहर है। ये कैसा अद्भुत ज्ञान है! कुछ तो बताओ कि इस रहस्य को उद्घाटित कौन कर रहा है?
इस सत्य ज्ञान को उद्घाटन करने वाला फादर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सर्वशक्तिमान, जगत नियंता, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है।
उड़ी बाबा, जय जय शिव भोलानाथ।
वाओ, इंटरेस्टिंग, एक्सीलेंट नॉलेज, माय गॉड जी।
पर विज्ञान की अति एक भयानक अंत की ओर इशारा कर रही है, और भयानक अंत के बाद एक सुखद शुरुआत भी होनी ही है, जैसे हर काली रात के बाद सूर्योदय तो होता ही है।
तो क्या साइंस के अब तक के महान योगदानों को हम नकार दें?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा विशाखा कि विज्ञान के योगदानों को नकारा जाए। अभी विज्ञान प्राय मूल्य विहीन शोध कर रहा है तथा अधिकांशतः विध्वंसात्मक कार्य में लगा हुआ है। इसमें किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसके बजाय विज्ञान प्रकृति की सेवा तथा हर मानव मन में नैतिक मूल्य की शोध में लग जाए तभी एक सकारात्मक पहल कर सकता है। परमात्मा द्वारा स्वर्णिम युग की स्थापना का कार्य 1937 में इस समय प्रारंभ हुआ जब विश्व नाटक में संगम युग की शुरुआत हुई। सभी वैज्ञानिक व यांत्रिक उपलब्धियां जो पिछले 100 वर्ष के दौरान की गई है भविष्य में बड़े अर्थपूर्ण ढंग से उपयोग में लाई जाएगी।
तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मेरे दोस्त।
एब्सोल्युटली राइट, हाउ इज इट पॉसिबल अजय?
स्वर्णिम युग में वैज्ञानिक अत्याधुनिक और सुंदर मशीनों का नवनिर्माण करेंगे। सब कुछ शुद्ध अनुवानिक और स्वर ऊर्जा पर कार्य करेगा। सभी यंत्र पूर्णतः सुरक्षित होंगे। पुष्पक विमान इंजीनियरिंग का उत्कृष्टतम नमूना होगा जो मन के संकल्पों से चलित होगा। मन शक्ति से चलित होने के कारण इसकी गति भी मन के समान तीव्र गति होगी। स्वर ऊर्जा से चलित होने के कारण इसे कोई बाह्य ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वर्णिम युग में धरती व पानी पर यातायात नहीं होगा बल्कि सारा यातायात वायु मार्ग से होगा। विमान पूर्णतः सुरक्षित होगे और इसको चलाना इतना आसान होगा कि बच्चे भी इन्हें संकल्प शक्ति द्वारा चला सकेंगे।
बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन विज्ञान के उच्च तकनीक और हर प्रकार के ऐशो आराम के साधन तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, परंतु वहाँ के लोगों के जीवन उतने ही भोगवादी और भावना शून्य है। सबसे ज्यादा अराजकता तो वहीं पाई जाती है। जैसे उस समाज के मनुष्यों ने तो स्वच्छता की सारी हदें ही पार कर दी है, आखिर ऐसे उन्नति का फायदा ही क्या?
स्वर्णिम युग में सभी मानव सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी तथा मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। उस स्वर्ग में शुद्ध पारिवारिक जीवन होता है। वहाँ जीवन में अकेलापन नहीं होता, सदा हर्ष उल्लास व खुशी का माहौल होता है।
वाह, अद्भुत दर्शन, आपने तो अनोखी बात कही है। मतलब जिस दुनिया के सपने मैं देखा करती थी वो दुनिया आने वाली है। धन्य है प्रभु की लीला।
क्या ऐसा समय जल्द ही आने वाला है?
हाँ महाराज, प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रदामस ने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी की अतल गहराइयों में वो समय प्रारंभ होने जा रहा है।
क्या वहाँ ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा जी?
वहाँ की जलवायु सदा बहार होगी, सदा वसंत ऋतु होगी, न बहुत ठंडी न बहुत गर्मी। इस समय धरती पर ऑक्सीजन 26% सुपर सैचुरेटेड अर्थात अति संतृप्त है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही है। साथ ही वृद्धावस्था और शारीरिक क्षरण भी बढ़ रहा है। वहाँ पर ऑक्सीजन मात्र 2% रह जाएगी, जो प्राणियों के सुखमय अस्तित्व के लिए पर्याप्त होगी। इस कारण वहाँ के निवासी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वे लंबे समय तक जवान रहेंगे, आयु बड़ी होगी तथा ताजगी और सौंदर्य बना रहेगा।
सुनकर मन तृप्त हो गया। आज तक मैं समझता रहा कि धर्म ही सर्वोपरि है, पर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज समझ में आया कि आध्यात्म से ही लोगों का जीवन उच्च और महान बनेगा, उन्हें शाश्वत खुशी, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी।
वहाँ धर्म भी एक ही होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का परिचालन एक के ही हाथ में होगा, जिससे सुदृढ़ सामाजिक स्थिरता निश्चिंत होगी।
आई थिंक विज्ञान अध्यात्म के बिना अंधा है।
साइंस इज ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी। एकदम राइट जे।
और मैं भी तो समझता हूँ कि धर्म भी तो अध्यात्म के बिना अंधा है, अर्थात रिलीजियन इज ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी, राइट?
एब्सोल्युटली राइट।
आप दोनों ही ठीक कह रहे हैं, पर यदि अंधा विज्ञान लंगड़े अध्यात्म का साथी बन जाए
तो फिर कमाल हो जाए।
मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ।
धर्म और विज्ञान यदि अध्यात्म का साथ दे दे तो अध्यात्म उस स्वर्णिम कालखंड को इस धरा पर साकार कर सकता है, और यही तो हम सब की चाहना है।
धन्य प्रभु की स्वर्णिम युग की योजना, वाह प्रभु वाह।
अब धर्म और विज्ञान को अध्यात्म के मार्गदर्शन पर ही चलना चाहिए।
यस, इट्स अ कॉल ऑफ टाइम।
तो ये है समय की पुकार, प्रकृति की पुकार, परमात्मा की पुकार और हम सब की भी पुकार, जो कि परमात्मा हम सभी को बता रहे हैं। तो ये जो आपने अपने बीच एक दृश्य देखा, आपके बीच डिवाइन कल्चर एंटरटेनमेंट ग्रुप की ओर से जो मुंबई से आए हुए हैं प्रस्तुत करने के लिए और आपके बीच हमने रखने की कोशिश की बहुत प्रभावशाली ढंग से, और आशा है कि हमने उसे आपके बीच जिस संदेश को पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा सके। और इस संदेश को पहुंचाने के लिए सभी की जितनी यहां पर इतनी मेहनत हुई है, जितनी सबने इतनी प्रशंसा करने लायक मेहनत की है, उन सभी को मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, सभी आ जाएं, और उसके पश्चात इस ड्रामा के डायरेक्टर श्री अश्विनी कुमार जी रोहतक से, उनके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए, वो भी आ जाए स्टेज पर। आपने इन कलाकारों में एक नई जोश, नया जान भरा, और ये जो कि हमें थोड़ा सा लगता था कि हम इस संदेश को कैसे पहुंचा पाएंगे, थोड़ी मुश्किल होती ऐसा लगता था, लेकिन इनके हमारे रहते हुए अश्विनी कुमार जी के साथ में हमें बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि हम बहुत कठिन चीज करने जा रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और सबसे ज्यादा धन्यवाद है जो उस परमपिता परमात्मा जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी, उन निमित्त आत्माओं के द्वारा जिन निमित्त आत्माओं ने हमें आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान की, आदरणीय हमारी दादियां, आदरणीय सरला दीदी जी, आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी, और इतने अनेक महान साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हमारे बीच बैठे हैं, उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हम सभी आप सभी को ऐसे ही संदेश दे पाए। और एक संदेश हम यहां से देना चाहते हैं, वो संदेश देने के लिए मैं अपना साथ देने के लिए बुलाना चाहूंगा दामिनी जी को, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गायिका हैं गुजरात की, और हमारे साथ दे रही हैं। और तो चलिए हम आपको एक संदेश हम सभी मिलकर देना चाहते हैं, जो संदेश इस पूरी दुनिया के लिए है। सभी तालियों से इस संदेश में शामिल हो जाएं ताकि हम दुनिया को एक साथ मिलकर यह संदेश दे सकें।
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का, लुटाते चले राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले
दुनिया में। प्यार ही सब कुछ है जो परमात्मा का होता है, निस्वार्थ प्यार जो हमें उन महान आत्माओं से मिलती है, जो महान आत्माएं आज हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
इस दुनिया में प्रकृति सदा ही देती रहती है, सदा ही उसे एक परोपकार की आदत है। प्रकृति की हर चीजें हम पर परोपकार करती हैं।
साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के वे खारे जल से मधुर नेह बरसाए हैं। करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के वे खारे जल से मधुर नेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
सुख सागर की
राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले,
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले।
देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले,
प्यार प्रभु का लुटाते चले,
प्यार प्रभु का लुटाते चले।
थैंक यू।
तो ऐसे प्यार सभी पर लुटाते रहें, सदा प्यार करते रहें, और इस खूबसूरत से माहौल में, इस खूबसूरत सी इस दृश्य के बीच हम अपने बीच बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से बुलाना चाहेंगे आदरणीय सरला दीदी जी को, आदरणीय मोहन सिंघल भाई साहब को, और हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ जो भी हैं उन सभी को हम अपने पास बुलाना चाहते हैं और उनकी आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं चाहते हैं। तो अपने बीच हम उन्हें पाकर धन्य महसूस करें। सबसे और एक महत्वपूर्ण बात जो हमें एक इस मधुबन बेहद घर, जिसे कहा जाता है परमात्मा का घर, वहां से इस पूरे मधुबन के सभी निवासियों ने इतना सहयोग दिया हम सभी को, खासकर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सहयोग दिया, साउंड डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, वीडियो डिपार्टमेंट और सभी जितने भी भंडारे, जितने भी सबने हमें भरपूर सहयोग दिया है, गॉडलीवुड स्टूडियो, पीएम टीवी, सबका तहे दिल से हम धन्यवाद करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को की आशाओं पर सदा खरा उतरते रहें।
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा वैज्ञानिक व अभियंता प्रभाग की ओर से मैं विशेष करके युव रतन भाई, आगे आइए युव रतन भाई, और हमारे भ्राता अरुण भाई, अरुण भाई आगे आइए, एक मिनट, युव रतन भाई जो आपने इसका पूरा निर्देशन भी वास्तव में किया, बहुत मेहनत करी, और अरुण भाई जो भिलाई में है स्टील प्लांट में, आपने सुना भी है, आपने विशेष करके इसकी स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मदद की है, तो आप दोनों का हम सब करतल ध्वनि से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। हमारी इस साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के एक थिंक टैंक हैं अरुण भाई, और केवल ये कल्चरल ही नहीं बल्कि अनेक अनेक जो सेवाएं होती हैं उनमें आपका विशेष विशेष योगदान रहता है। भिलाई स्टील प्लांट में डीजीएम होते हुए भी, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए भी आप ईश्वरीय कार्य में सदा ही सहयोगी रहते हैं। और डायरेक्टर साहब जरा आइए, इनसे तो मेरी आज ही भेंट हो रही है, बहुत 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 धन्यवाद।